ओम शांति। हमें पिछले दो दिनों से काफी कुछ इनपुट्स मिले हैं और जब आप सुनते हैं तो आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये भी बहुत अच्छा है, ये भी जीवन में लाने के लायक है, इसको भी करना चाहिए। थोड़ा अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को भी बताना चाहिए। ऐसे ऐसे कुछ थॉट्स हमारे मन में आने लगते हैं और कोई कई हमारे में से भी ये भी सोचने लगते हैं कि ये तो अभी करना ही है, ये हमारे लिए बड़ी सदुपयोगी है, वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। तो आज का जो विषय है वो है एम्ब्रेस चेंज। वास्तव में देखा जाए परिवर्तन को अपनाना ये अच्छे जीवन की कुंजी है, इट्स ए की ऑफ ए गुड लाइफ, बिकॉज इट ओपन्स द डोर्स फॉर न्यू लर्निंग, न्यू स्किल्स, न्यू वेज ऑफ लाइफ। और चेंज का नेचर ही क्या होता है, जैसे कहते हैं ना पानी का नेचर होता है, इसी प्रकार चेंज का नेचर क्या होता है, इट इज कॉन्स्टेंट। द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड कॉन्स्टेंट इज दैट इज चेंज। क्योंकि हम जानते हैं बढ़ती उम्र के साथ हमारी पोशाक की जो साइज है वो बदल जाती है, हमारी पहचान भी बदल जाती है। पहले तो हम बच्चे कहलाते हैं, देन मे बी स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, देन जो पढ़ रहे होते हैं वो उसके साथ ऐड हो जाता है। प्रोफेशन में जाते हैं तो प्रोफेशनल के रूप में हमारी पहचान बनती है, कुछ अच्छा स्टेटस मिलता है, कुछ डेजिग्नेशन मिल जाता है, कुछ सोशल स्टेटस मिल जाता है, तो वो उसमें और ऐड हो जाता है। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ हम देखते हैं हमारी पोशाक, हमारी पहचान बहुत कुछ बदलने लगता है। इवन जो प्रकृति है ये भी चेंज होती रहती है। देखिए भारत में कितनी ऋतुएं हैं, कितने सीजन्स हैं, है ना, और दैट्स द रीजन कि भारत में फलों की, सब्जियों की, कलर्स की वैरायटी है, ये रीजन है उसका। आप जरा विजुलाइज कीजिए कि धरती अभी दो मिनट के लिए स्थिर हो जाए, ये जो अर्थ है ये दो मिनट के लिए एकदम स्टैटिक हो जाए, हो सकता है? हो सकता है, क्या होगा? कैओस होगा ना। ऐसे ही अगर लाइफ में चेंज ना हो तो लाइफ कैसी होगी, हम ये सोच सकते हैं। तो हमने कभी बचपन में गेम खेला होगा, है ना, अभी भी हम एक एक्टिविटी करेंगे तो मैं आप में से मैं इनवाइट कर रही हूँ किरण भाई को, वो आपको आकर गेम कराएंगे, और भी जो दूसरे उनके साथी हैं आए और वो उस एक्टिविटी को कराएंगे। तब तक जब तक वो आए मैं स्टेज पर 10 लोगों को बुलाना चाहती हूँ, अपनी चॉइस से 10 आ जाएं, कोई भी उठकर आ सकते हैं। खेल खेलने में तो मजा आता है ना, है ना, आप एक और तो कुछ करना नहीं है, खेल खेलना है, मजा आता है खेल खेलने में। 5 इधर आ जाओ, 5 इधर आ जाओ, या सब इधर आ जाएं, आ जाइए। हमने बचपन में एक गेम खेला होगा, आपको याद है, जिसको क्या कहते हैं गेम को, स्टैचू, याद है। अभी आप इसी प्रकार का एक दूसरा गेम देखिए, अभी हमारे किरण भाई इस गेम को लीड कर रहे हैं और जो अपनी जगह पर खड़े होकर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इनके साथ साथ। यस, आगे पीछे होके एडजस्ट हो जाइए थोड़े थोड़े, जिनको भी इंटरेस्ट आता है वो स्थान पे खड़े होके कर सकते हैं। यस, खड़े हो जाइए, करिए।
मूव एंड फ्रीज फ्रॉम द अवार्ड विनिंग सीडी ब्रेन बूगी बूस्टर्स बाय द लर्निंग स्टेशन। Come on, move and freeze. 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 Put your right hand on your left knee, your left hand on your right. Your knees move in and out, your hands stay tight. Now keep on with your moving, but switch hands on your knees. Keep on moving in and out till we say freeze. Come on, move and 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 freeze. Put one hand across your shoulder, one hand across your back. Now jump in place. Do you like it like that?
Yeah!
Now switch hands across your shoulder and switch hands across your back. Now just be nimble, just be quick, just like Jack. Come on, jump
and freeze.
Come on,
jump
and freeze. Come on,
jump
and freeze. Come on,
jump and freeze.
Everybody shake your body from your head down to your feet. And don't stop shaking until we stop the beat. Shake it to the east and shake it to the west.
Shake it, shake it, shake it.
With my friends who are the best. Come on,
shake and freeze.
Come on,
shake
and freeze. Come on,
shake
and freeze. Come on,
shake
and freeze. Put your right hand on your head, your left on someone's knee. Now turn once in a circle and buzz like a bee. Now turn the other way, don't let go or lose your spot. Keep turning left, keep turning right, until the music stops. Come on,
turn and freeze.
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 All right, you can move now.
Thank you. Give a handful of clapping. Applaud them, yes. Enjoy kiya sabhi ne? Enjoyed? सबको अच्छा लगा? जो ऊपर है, बॉडी वार्म अप हो गई? यस, बड़ी अच्छी बात है, वेरी नाइस। व्हाट डिड यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप इससे? जब चेंज हो जाएगा तब हो जाएगा, अच्छा, और आप उसी मोमेंट में थे, लेकिन अभी आप कंक्लूजन इसका क्या निकालते हैं? एंजॉय करते हैं, अच्छा, और इट मींस आपने इसको एंजॉय किया, किसको एंजॉय किया? परिवर्तन को एंजॉय किया, अच्छा, और एनीवन एल्स फ्रॉम द बैक? देखिए, हाँ जी, बीच बीच में एनर्जेटिक हो जाते हैं. एनर्जेटिक कब हो गए थे, जब फ्रीज हो गए थे तब, या जब मूव कर रहे थे तब? जब मूव कर रहे थे तब एनर्जेटिक हो गए थे. डोंट यू थिंक इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि चेंज भी जरूरी है और स्थिरता भी जरूरी है. दोनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन लाइफ में होता क्या है, वी ऑलवेज क्रेव फॉर रूटीन्स एंड प्रिडिक्टेबिलिटी. हमको लगता है कि हमें पहले से ही मालूम हो सब कुछ, या जो हमारे रूटीन्स चल रहे हैं, एक दिनचर्या सेटअप हो हमारी, उस दिनचर्या पर हम चलते रहें. और कभी कभी तो जिन सिचुएशन में एट प्रेजेंट उनसे गुजर रहे होते हैं, जिस रूटीन से गुजर रहे होते हैं, उससे कोई हमें बेनिफिशियल पर्पस भी नहीं सर्व होता है, लेकिन फिर भी हम उसी सिचुएशन को पकड़ कर रखते हैं, कारण हम उससे फैमिलियर हैं. तो हम होता क्या है लाइफ में, अभी आप सब ये समझ रहे हैं कि जब मूव करते हैं, जब चेंज होता है, उससे एनर्जी आती है. जैसे कहा बॉडी वार्म अप हो गई, थोड़ा एनर्जी मिली आपने कहा. हाँ, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि कहीं हम रुक के रह गए हैं. कोई है ऐसा जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, कुछ ऐसी चीज हो गई है अपने साथ जो हमको रोक रहा है, कोई हमारे रास्ते में ऑब्स्टेकल है शायद. और कईयों को तो यही समझ नहीं आता कि हम स्टकअप क्यों हो गए हैं, हम अटक क्यों गए हैं लाइफ में, क्यों हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ नहीं बढ़ रहे, क्यों हम एक जगह अटक कर रह गए हैं. तो मेरा आप सबसे सवाल है, डू यू समटाइम्स फील स्टक अप इन लाइफ? किसी ने तो आधा क्वेश्चन सुनते ही ऐसे से कर दिया. डू यू फील? यस, लगता है कि हम अटक गए हैं. आप बीच वाले, आगे पीछे वाले क्या कहेंगे? यस यस, जो बहुत दूर दूर बैठे थोड़ा बीच में आ जाएंगे तो अच्छा है. और ये जो साइड्स में बैठे हैं उनको क्या लगता है? लगता है हम अटक कर रह गए हैं कि अटकते हैं? लगता है ना ऐसे. तो उसका कारण क्या है, क्यों हम लाइफ में ऐसा फील करते हैं कि आगे नहीं हो रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसा हमें लगता है. तो ऐसा क्यों होता है? डू यू नो द रीजन? मैंने अभी आपको कहा कभी तो हमें यही नहीं मालूम पड़ता है कि आखिर भी इसका कारण क्या है, उसका मेन कारण क्या होता है कि वी रिजिस्ट चेंज. जो परिवर्तन हमारे जीवन के अंदर किसी भी कारण से आ रहे हैं, these changes can be normal, these changes can be physical, these changes can be emotional, it can be mental, it can be spiritual. ये जो changes हमारे life में आ रहे हैं, वो changes नहीं होने चाहिए, बस वो होना, ये नहीं होना चाहिए, तो उनको हम resist करते हैं. और आपको मालूम है resistance से क्या होता है? फ्रिक्शन पैदा होती है, घर्षण पैदा होता है. और उसका कारण देयर इज फियर ऑफ अननोन. अभी देखिए, जैसे आप अभी यहां पर एक्टिविटी कर रहे थे, मूवमेंट्स कर रहे थे, यू कैन कॉल इट ए काइंड ऑफ डांस, यू नो, मूवमेंट्स आपकी चल रही थी. तो कोई कोई ये भी सोचते होंगे आप में से, अगर मेरा ठीक ना हुआ तो इसलिए मैं नहीं करता हूं, कोई बैठे रहे ऐसे, क्योंकि तो मुझे तो आता ही नहीं है. और आपको क्या कहा गया था? जैसे भी करो, आपको जो आता है वो करो. लेकिन अंदर में कहीं वो फियर होता है कि अगर कोई मुझे देखेगा तो, मुझे कोई कुछ कहेगा तो, मेरी इमेज बिगड़ गई तो, जो मेरे पास है वो भी अगर मेरे हाथ से चला गया तो. फियर क्या है? जो फियर करते हैं ना, जिनके अंदर भय होता है, आप याद रखिएगा वो अपने ही बिलीफ सिस्टम से अपना कंफर्टेबल जोन तैयार करते हैं. दे हैव परसेप्शन अबाउट देयर लाइफ. उनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं. और फियर जो है इट ऑलवेज लव्स कंफर्टेबल जोन. और उस कंफर्टेबल जोन से वो बाहर निकलना नहीं चाहते क्योंकि उनको अंदर मन में भय रहता है. और याद रखिए, फियर तब तक नहीं निकलता है जब तक आप एक्शन में नहीं आते हैं. मैं आप सबको देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी. किसी ने बिगनिंग में जरा सा किया, फिर थोड़ा 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 वजह से ओपन अप हो गए और जैसे भी कर रहे थे वो करने लग गए. तो जब तक आप एक्शन में नहीं आएंगे, फिर कभी भी निकलता नहीं है मन से बाहर. हमें एक्शन में आना पड़ता है. और जैसे मैं आपको सुना रही थी, हमारे कुछ परसेप्शंस होते हैं लाइफ के बारे में. कभी कभी ये भी परसेप्शंस होते हैं, हमारी लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन है, उसको पूरा करना चाहिए, हमारे फैमिली वालों को, हमारे पेरेंट्स से, मेरे स्पाउस को या मेरे चिल्ड्रन को या मेरे रिलेटिव्स को ये एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको पूरा करना चाहिए, नहीं पूरा करेंगे तो क्या होगा. तो ऐसे ऐसे परसेप्शंस हमने बनाए हुए होते हैं, उनसे ब्रेक लेने की जरूरत होती है. और तीसरी बात, हम क्यों स्टक अप हो जाते हैं, मोटिवेशन नहीं है लाइफ में, कोई उमंग उत्साह नहीं है. आपको मालूम है ब्रह्मा कुमारी की टीचिंग में क्या कहा है? कि अगर समझो आपको कोई एनकरेज करने वाला नहीं है, कोई इंस्पायर करने वाला नहीं है, आपको कोई आने वाला नहीं है, तो आप अपने आप को ही मोटिवेट कर लो, अपने आप को ही शाबाश दे सकते हैं. अपने आप को शाबाश, आपने कोई अच्छा काम किया, आपका सक्सेसफुल हो गया, जरा दे दो, कर दो, पैट कर दो अपने शोल्डर, तो अचीव कर लिया. लेकिन मोटिवेशन होता ही नहीं है. व्हाई वी हैव द नॉर्म ऑफ अटेंडिंग रेगुलर कोर्स क्लासेस इन ब्रह्मा कुमारीज. आप उसको सिंपल भाषा में प्रवचन कह देते हैं. हमारे यहां ये नियम क्यों बना हुआ है कि हमें रोज हमारी क्लासेस सुननी है. देखिए, एक दिन सुन के काम नहीं होता है. जब वो रोज सुनते रहते हैं ना, सुनते रहते हैं, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं. और जब हम रोज सुनते हैं तो रोज सुनने क्या होता है, वी फील बूस्ट अप मोरली. और सबसे अच्छी बात उसके अंदर एक आती है, जो भगवान का वर्षन, वो है मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट चाइल्ड. कोई दुनिया में ऐसा फादर होगा, उसको अपने बच्चों से कितना भी प्यार होगा, कभी वो मीठे बच्चे रोज कहता होगा, उसको कहता होगा. लेकिन यहां रोज हम ये सुनते हैं मीठे बच्चे, तो आप सोचिए कितना हम अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं. तो जब वो लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, और दुनिया में आप क्या समझते हैं, लोग पुल करने वाले होते हैं, लेग पुलिंग ज्यादा करते हैं या आपको मोटिवेट ज्यादा करते हैं, व्हाट डू यू थिंक? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लेग पुलिंग. और आजकल ऐसा हो गया है कि यदि कोई आगे बढ़ रहा होता है ना, तो उसको शायद ही कोई डाइजेस्ट कर पाता हो, शायद ही उससे खुश हो पाता हो. बहुत कम लोग हैं आज दुनिया में. इसलिए अपने मोटिवेशन को बनाए रखने की जरूरत होती है. और चौथी बात, क्यों हम स्टक अप हो जाते हैं लाइफ में, क्योंकि वी कीप ऑन कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर्स. समझो हम कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं है, बहुत बड़ा जॉब नहीं है, बहुत बड़ा सब कुछ नहीं है. जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे ज्यादा ऊंचे हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, धनाढ्य व्यक्ति हैं, हम उनसे अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं. तो ये कंपेयर करना कैसे हो गया, जैसे एक छोटा बच्चा जिसने स्कूल में एडमिशन लिया है, अभी थोड़ा ही पास किया है, और वो बिल्कुल जो आगे जा चुका है उससे अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहा है. दिस इज रॉन्ग. कंपैरिजन लीड्स टू कंपटीशन. टू कौन सा कंपटीशन? जो हेल्दी कंपटीशन नहीं है, जो अनहेल्दी है. हेल्दी कंपटीशन इज गुड. अगर कंपेयर करना है तो अपने ही जीवन को, अपने ही कर्मों को, जो आप थे और जो अब आप हैं, उससे कंपेयर करो। हमें दूसरों के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। अगर कंपेयर करते रहेंगे तो इसके पास ये है, इसके पास ये है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, आप हमेशा ही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते रहेंगे। यू वॉन्ट बी एबल टू एंजॉय द वेरी पर्पस ऑफ लाइफ। तो इसलिए हम अपनी लाइफ के अंदर जल्दी से स्टक अप हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि हमें ये समझ लेना चाहिए, द लाइफ इज लाइक ए रिवर। वन कैन नॉट स्टेप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस। उसी नदी के अंदर आप दो बार पांव नहीं रख सकते। रख सकते हैं, सेम है ना, गंगा नदी, जमुना नदी, सरस्वती, है ना, सेम है ना नदियां, गोदावरी, ये सब है ना नदियां। लेकिन हम सेम नदी में कभी भी दो बार कदम नहीं रख सकते। व्हाई? इट इज एवर फ्लोइंग एंड कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग। वो बहती रहती है, बहती रहती है, उसका पानी बदलता रहता है और वो निरंतर चलता है। और हम आमतौर क्या करते हैं, वी ऑफन रिजिस्ट द करंट। जो जीवन रूपी नदियां हैं उसमें जो चल रहा है, जिस बहाव में हम बह रहे हैं, हम उसको रिजिस्ट करने की प्रयास करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, वी डेवलप स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। हम नदी के बहाव को रोक सकते हैं? हम नहीं रोक सकते हैं। तो इसीलिए हम वी शुड एम्ब्रेस दिस रियलिटी है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अगर आप इस वास्तविकता को स्वीकार कर लें, इसको अपना लें, साइलेंस है उसका हम निर्माण करते हैं। देखिए आजकल आम तौर से सब ब्रेक वो इमोशनली बनता है, हम अपने इश्ते हैं। और जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं तो आप इमोशनली रिजाइलेंस का अंदर ही अंदर निर्माण करते हैं। और अगर आप रिजल्ट, तो जैसे मैंने पहले कहा, तो कर लिया, लाइफ में चेंज चाहे एक्सपेक्टेड हो या अनएक्सपेक्टेड हो, कैसा भी चेंज हो, इन्फॉर्मेशन आना है, नेचुरल हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, विदाउट चेंज लाइफ ग्रोथ, लाइफ में चेंज नहीं होगा तो लाइफ में विकास भी नहीं होगा। देखिए एक बड को फूल बनने में एक चेंज के प्रोसेस से गुजरना होता है। नो वन लाइक्स टेकिंग ए क्लोज्ड बड। देखिए ये अभी अभी फूलों से स्वागत किया गया, राइट? ये सारे फूल कैसे हैं? ये सारे खिले हुए फूल हैं, राइट? और अगर इसकी जगह सारी ही बंद कलियां होती तो वो कैसा लगता? बंद कली कोई लेना पसंद नहीं करता है। बंद कली से वो अध खिली कली बनती है, फिर थोड़ी और खिलती है, फिर थोड़ी और खिलती है, और फिर वो पूरा फ्लावर बन जाता है। और हमें पसंद क्या आता है? जो खिला हुआ फ्लावर होता है। तो चेंज इन लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन टू ए बेटर वर्जन। याद रखिए, जो परिवर्तन आते हैं हमारे जीवन के अंदर, हमें कुछ आगे बढ़ाने के लिए, कुछ मेरा और बाहर और कुछ निखार आएगा, कुछ हम और अच्छा बनेंगे, कुछ मेरी ग्रोथ होगी, कुछ ये मेरे यूजफुल पर्पस के लिए है। जैसे बहन आपको बता रही थी कि वो मेरे कल्याण के लिए है। तो ये हमें जान लेना चाहिए कि जब चेंजेस आते हैं ये आना स्वाभाविक है। एंड इट इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट लाइफ इज स्टेग्नेंट विदाउट ग्रोथ। अगर लाइफ में ग्रोथ ना हो, ऐसे पॉसिबल हो सकता है बच्चा बच्चा ही रह जाए। जो ऐसे होते हैं 18-20 साल के हो जाते हैं और उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं होती है तो क्या कहते हैं, उसको नॉर्मल कहा जाता है? आप बताइए मुझे, उसको नॉर्मल कहा जाता है? ऐसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना कभी कभी कि उनका एज तो बड़ा हो जाता है फिजिकल एज, लेकिन उनकी जो माइंड की एज है उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, और वो उसी प्रकार से रहते हैं। उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं जहां उनको पढ़ाया जाता है ऐसों को, तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं? नॉर्मल नहीं कहते हैं। तो जब तक लाइफ में परिवर्तन नहीं होगा तो तब तक जो है हमारी ग्रोथ होना भी संभव नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, व्हाट वी शुड से, व्हाट वी शुड से, वी विल एम्ब्रेस चेंज, राइट? कैन यू से, कैन यू रिपीट, ऑल ऑफ यू रिपीट, वी विल एम्ब्रेस चेंज। यस, वी कैन ओपन अवर हैंड एंड से वी कैन एम्ब्रेस चेंज। और चेंज को हम कैसे एम्ब्रेस करेंगे, मजबूरी से या खुशी से? नॉट आउट ऑफ कंपल्शन बट विद हैप्पीनेस। कहा गया है पतझड़ के बिना पत्तों में बहार भी नहीं आती है, वृक्ष पर बहार भी नहीं आती है। अगर पतझड़ नहीं होगी तो नए पत्ते आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो ऐसे ही कुछ अगर ऐसा होता है, कुछ चेंज होता है, कुछ हमारे से चला जाता है, समझो हमसे कुछ चला भी गया तो भी वो कुछ अच्छे के लिए है, ये स्वीकार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, आप में से कुछ सोच सकता है, शायद अभी ना सोच रहा हो सकता है बाद में सोच ले कि अब सुनना तो बड़ा अच्छा लगता है ना? अब दीदी ने कह तो दिया, लेकिन सचमुच जब हम जीवन में जीते हैं, अपने अपने स्थानों पर जाएंगे, अपने अपने प्रोफेशन में जाएंगे, अपने अपने परिवारों में जाएंगे, वही लोग, वही परिवार वाले, वही प्रोफेशन में मिलेंगे, वही सगे संबंधी, वही पड़ोसी, तो लगेगा कि सीख के तो आए थे कि चेंज को एम्ब्रेस करना है, लेकिन अभी हो तो रहा नहीं। अब इसको कैसे हम अपनाएं अपने जीवन में, तो उसके लिए मैं आपको आज 3-4 बातें सुनाना चाहूंगी। और सबसे पहली बात ये है कि जैसे पक्का कर लीजिए अपने साथ, परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है, नो वन कैन चेंज इट, नो वन, कोई पावर उसको चेंज नहीं कर सकती है, ये प्रवृत्ति सृष्टि का अटल नियम है, ये हम सब जानते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सभी के पास लगभग नोटबुक पेन होगा मेरे हिसाब से, तो मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगी, आप पहले ध्यान से सुनिए, फिर आप उनके जवाब अपनी नोटबुक में लिखिएगा। नोटबुक पेन नहीं है तो आपके पास मोबाइल तो है, मोबाइल के सब साउंड सबको साइलेंट मोड पे रखिएगा, लेकिन आप उसको जो है अपने नोट्स में लिख सकते हैं, जो अभी आप प्रश्न देखेंगे उनके जवाब आपको लिखने होंगे। पिछले 5 से लेकर 10 सालों के अंदर क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है? इज योर चॉइस ऑफ म्यूजिक चेंज्ड? गीत सुनना, म्यूजिक तो हम सब सुनते हैं ना, ये गीत सुनना, उसमें कुछ चेंज आया है? पहले बड़ा अच्छा लगता था, शायद अभी कम अच्छा लगता है, पहले वो दम धड़ाके वाले अच्छे लगते थे, अभी शायद क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगता है, कुछ चेंज आया है? और द वे यू ड्रेस अप, आपके जो ड्रेसिंग स्टाइल में, उसमें कुछ चेंज आया है? या कुछ किताबें या वो मटेरियल जो आप पढ़ते आए हैं, जिसको रेफर करते आए हैं, उसमें कुछ चेंज आया है? या आपकी हॉबीज में कुछ चेंज आया है? पहले बाहर जाके आपको खेलना पसंद आता था, अभी आपको बाहर जाकर खेलना पसंद नहीं आता, अभी मोबाइल पे खेलना पसंद आता है? या आपके मित्रों की चॉइस में, उसमें कोई चेंज आया है? या आपके वर्किंग पैटर्न में, आपके वर्किंग स्टाइल में कुछ चेंज आया है? या और कोई चेंज आया है? आया है? आया है तो जरा लिखिए ना, क्या चेंज आया है, राइट डाउन. यस, इस राइट डाउन, या सोचिए या राइट डाउन कीजिए. लिखने से जरा अच्छा होता है, वो जरा अंदर में जाता है जब लिखते हैं. तो कुछ लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिखा. यस यस, आई गिव वन मिनट मोर. राइट डाउन. नाउ स्टॉप. अब मेरा आपसे सवाल है कि जब आप लिख रहे थे तब आप अंदर में क्या फील कर रहे थे? क्या अंदर में थिंकिंग चल रही थी? अच्छा, यू आर फीलिंग गुड. व्हाट टाइप ऑफ गुड? अच्छा, जब आपने लिखा, देखा कि आप में ये चेंजेस आए हैं, तो आपने देखा कि आपके अंदर बहुत बेटरमेंट आई है, तो ये जो चेंजेस मेरे लिए आए तो बेहतर बनाने के लिए मुझे आए, इसलिए आपको अपने पर बहुत प्राउड फील होने लगा. वेरी गुड. अच्छा, इसलिए उनको गुड अच्छा लगा. और कौन बताएगा? जब आप लिख रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? क्या चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में? कोई और बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे? हाँ जी, बोलिए. जो हाथ खड़ा करे, खड़े होके बोलिए. अच्छा, उसमें चेंज आया. तो आपको फीलिंग क्या हो रही थी अंदर में जब आप लिख रहे थे? तो ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा होता जा रहा हूं. देखिए, यस, यू नो, ही इज टेलिंग वेरी ऑनेस्टली. यस, इज टेलिंग वेरी ऑनेस्टली. राइट. मीठा. हाँ, अभी मीठा कम हो गया है. अच्छा, तो वो अपने चेंजेस वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या आया था. हाँ, अच्छा अच्छा, तो आपको कैसा लगा? वही सेम, कि बूढ़ा होता जा रहा हूँ. ठीक है, बैठिए. बूढ़े की बजाय ये कह दो कि मैं मैच्योर होता जा रहा हूँ. यस ना, बूढ़े की बजाय हम मैच्योर होते जा रहे हैं. यस, हाँ जी. अच्छा, और कौन बता रहा था? आप बता रहे थे. हाँ, बोलिए. वन मिनट ब्रदर. हाँ, ब्रदर एट द बैक, खड़े रहिए आप, ये बता रहे तो पहले. हाँ, बोलिए. ओके. राइट, थैंक यू. सिट डाउन. देखो, इनको, इनके मिक्स फीलिंग्स थे. कुछ चेंजेस ऐसे थे जो इनको अच्छे लग रहे थे, और कुछ चेंजेस थे जो अच्छे नहीं लग रहे थे. वह नेगेटिव फीलिंग जैसे आ जाती हैं, ऐसा हो रहा था. तो इस तरह का इनकी थिंकिंग थी. देखो, लिखने से बहुत फर्क पड़ता है. हाँ जी भाई साहब, आप बोलिए. जो पीछे खड़े हैं भाई साहब, बोलिए.
ओम शांति
जी.
जब मैं फील कर रहा था, इसमें जो लिख रहा था, तो एक तो मुझे पुराना जमाना अपना याद आ रहा था, बचपन याद आना लग गया था.
अच्छा,
सबसे बढ़िया चीज भी इतना बचपन था उसमें. वाह. जो है, बचपन को जो है पूरा याद करके भी, हां जी, बचपन के दिन कितने अच्छे थे. और इसके बाद अभी जो है मेरे बिहेवियर में ये चेंज आ गया. अब मेरा जो है सर्कल एक तो बहुत ऊंचे लोगों से हो गया, सारे जो है सेक्टरी लेवल्स के साथ में. पहले जब उनके साथ में दोस्तों के साथ सब छूट गया, पुराने दोस्त आना छूट गया, ये मुझे बुरा लगा.
ओके.
जो पुराना,
आपकी भी मिक्स्ड फीलिंग्स रही. जैसे आपको बचपन याद आ गया तो बड़ा अच्छा लगा, और अभी वो मेरे साथ छूट गए तो लगा कि वो थोड़ा सा बुरा लगा, वो पुराने साथ हमारे छूट गए. ठीक है ना, मिक्स्ड फीलिंग्स थी आपकी भी. प्लीज सिट डाउन. थैंक यू. बहुत अच्छा, आप सबने औरों ने भी किया होगा. आप अपने साथ कभी करके देखिएगा. यहाँ तो हम सबका नहीं पूछ सकते हैं, आप अपने साथ लिख कर देखिए. कभी करिए इस चीज को, तो आपको अंदर में क्या महसूस होता है उसको फील करने की कोशिश कीजिए. तो हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, पहले पहले मन में ये पक्का कर लो, ये बात पक्की कर लो. अगर चेंज को अपनाना है, इफ यू वॉन्ट टू एम्ब्रेस द चेंज, ऑलवेज रिमेम्बर, चेंज इज इनएविटेबल, नॉर्मल एंड इसेंशियल. It is not abnormal. Whether it is expected or it is unexpected. Whether you like it or you do not like it. But change is inevitable. It is normal and essential. और जब वो चीज जो चेंज आ रहा होता है और हमसे स्वीकार नहीं हो रहा होता है तो उस समय जैसे कहते ना साइकोलॉजिस्ट अफर्मेशंस पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं जिसको वो कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं तो आप क्या करें उस समय बार बार मन को याद दिलाएं मे बी से 5 times मे बी 10 times मन को याद दिलाएं हे मन तू याद रख ये परिवर्तन अनिवार्य है हे मन ये परिवर्तन सामान्य है ये होना स्वाभाविक है ओ माई माइंड जस्ट रिमेम्बर दिस चेंज इज इनेविटेबल दिस इज एसेंशियल फॉर मी दिस इज एसेंशियल फॉर माई ग्रोथ ये अपने मन को कहो और आज सबसे बड़ी यही एक बात है जिसमें मॉडर्न मैन लैक करता है वो सब कुछ बाहर एक्सप्लोर करता है सब कुछ बाहर करता है लेकिन अपने मन को कभी देखता नहीं है मन को कभी झांकता नहीं है मन को कभी सिखाता नहीं है इसलिए मन उसको कह देता है वो तो चंचल है लेकिन मन का क्या कसूर अपने आप से पूछो कि क्या तुमने कभी अपने मन को सिखाया था कभी मन को ट्रेनिंग दी थी कभी मन को पढ़ाया था आज उसको करने की जरूरत है नेक्स्ट एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द चेंज आप उसको एक्नॉलेज करो चेंज को कैसे हम करते हैं देखिए बचपन में जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना और जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के लिए जब हमें लिखना सिखाया जाता है हमें पेंसिल्स दी जाती हैं पेंसिल्स और इरेजर साथ में होता है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना अभी तो लिखना सीख रहे होते हैं ए बी लिखेंगे और फिर उल्टा सीधा हो जाएगा फिर उसको इरेजर से इरेज करेंगे फिर उसको लिखेंगे क्योंकि हमको मालूम है पेंसिल से लिखेंगे इरेजर है वो उसको इरेज कर देगा लेकिन हमारी निगाह कहाँ होती है छोटे बच्चे आप देखो उनका ध्यान कहाँ होता है उसका कोई बड़ा भाई होता है घर में कोई बड़ा होता है घर में पेन होता है तो वो यही देखता रहता है कि मैं कब पेन से लिखूंगा होता है ना पेन से लिखने की बड़ी क्रेज होती है उसको और अब आप देखिए पेंसिल और इरेजर से हम पेन पर आ गए जब पेंसिल से लिख रहे थे तब तो जो गलत लिखा गया उसको हमने मिटा के फिर ठीक कर लिया लेकिन जब पेन से लिखना शुरू किया और पेन से कुछ गलत लिखा गया तो अब वो इरेज नहीं हो सकता दैट चेंज हैज अकर्ड वो नहीं हो सकता वी हैव एक्नॉलेज्ड हमने इसको एक्नॉलेज किया ना कि अभी पेन से ही लिखना है ना हमने एक्नॉलेज किया तो एक्नॉलेज मीन्स बीइंग अवेयर दैट चेंज इज ऑन वे और उसके बाद क्या है एक्सेप्ट उसको एक्सेप्ट करो स्वीकार करो और स्वीकार करने का मतलब क्या होता है देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक्सेप्टेंस हमारे लिए बड़ी डिफिकल्ट होती है हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमसे एक्सेप्ट होता नहीं है मन बार बार उसको नकार रहा होता है किसी ने मेरा अपमान किया मुझे अच्छा नहीं लगा वो चेंज हुआ ना मेरी लाइफ में सिचुएशन बदल गई ना थोड़ी सी और वो भी किसने किया जो बिल्कुल मेरे करीब है वो भी उसने किसकी कब किया 4 के बीच में किया ठीक है अब मुझे ये स्वीकार करना है आसान है स्वीकार करना नहीं मन नकारता है डिनाई फेज में जाता है मन और बार बार कहता है मन ये क्यों हुआ इसको ये नहीं करना चाहिए था मैंने कभी नहीं सोचा था ये मेरे साथ ऐसा करता इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया अब मन डिनाइल फेज में जा रहा है और उससे फिर क्या होता है उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या आती है कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं कभी कहते हैं हमारी ग्रह ही खराब है, कभी भगवान को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने कर्मों को दोषी ठहराते हैं, कभी खुद को ही दोषी ठहराते हैं। अब बताइए, दोषी ठहराने से क्या कोई रिजल्ट निकलेगा? निकलेगा कोई रिजल्ट? अब एक्सेप्ट करना वाना क्या होता है? इट्स ए हेल्दी वे ऑफ थिंकिंग। देखिए बचपन में क्या होता है, जब हम खेलते हैं ना, खेलते खेलते कभी क्या होता है, कोई कोई ना बचपन में ऐसे ही नो अपनी बचपन के हिसाब से ना कभी कुछ कुछ गड़बड़ गड़बड़ करके ना वो आगे आ जाता है और वो जीत जाते हैं और हम हार जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, छोड़ दो, बच्चा समझ के छोड़ दिया, ये कौन सी बड़ी बात है, गेम ही तो है, कोई हार और जीत तो होती होती है। ऐसे कैजुअल थिंकिंग करके हम क्या कर देते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, राइट? तो इसी प्रकार जीवन के अंदर भी हमें क्या करना है, एक ऐसा थिंकिंग का वे अपनाना है जो हमारे लिए हेल्दी है। अगर हम हेल्दी वे ऑफ थिंकिंग अपनाएंगे तो हम उसको स्वीकार कर सकेंगे। तो सेट अप योर माइंड टू एक्सेप्ट द रियलिटी, वेदर इट इज एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। अपने माइंड को आप सेट कर लीजिए। जैसे मैं आपको बता रही थी, मैं एक एग्जांपल और देती हूं। घटना घट चुकी है, किसी ने मेरे साथ खराब व्यवहार किया है, वो बात हो चुकी है। और कैसे उसके फेजेस में आते हैं हम लोग, पहले मन उसको स्वीकार नहीं करना कर रहा होता है, हम रियलिटी के साथ स्ट्रगल करते हैं, जो मैंने अभी आप बताया ना एग्जांपल, स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं अभी क्या करूंगा, मैं जरूर इसके लिए ये करूंगा, मैं भी उसको बताऊंगा जब मेरा समय आएगा। और क्योंकि मन अंदर से स्वीकार नहीं कर रहा है, हम रियलिटी से संघर्ष कर रहे हैं। और जब देखते हैं प्रैक्टिकली में, वो हमारी स्ट्रगल किसी पॉजिटिव रिजल्ट को नहीं जा रही है, तो हम थोड़ा लो मूड में आ जाते हैं, हमारा मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। और उसके बाद कोई कोई व्यक्ति उसमें डिप्रेसिव मूड में चले जाते हैं। फिर धीरे 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 समय पास होते होते जो वास्तविकता है, रियलिटी है, हम उसको स्वीकार करने लगते हैं। और अल्टीमेटली हम स्वीकार करते हैं, क्यों? क्योंकि अब आपको समझ में आ गया, यू कैन नॉट फाइट, यू कैन नॉट स्ट्रगल विद द रियलिटीज। आपको ये समझ में आ गया है? हरेक का एक समझने का साइकिल अपना अपना होता है, कोई कम समय लेते हैं, कोई ज्यादा समय लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हरेक को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए अपना ये स्वभाव बना लीजिए कि जो भी हमारे जीवन में घटनाएं व्यक्ति के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, नेचुरल फिनोमिनास के रूप में, या अन्य किसी बिहेवियरल चेंजेस के रूप में जो घटनाएं घटित होती हैं हमारे जीवन के अंदर, उनको हमें स्वीकार करके चलना है। और मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगी, स्वीकार करने से क्या होता है, स्वीकार करने से जो मेरे साथ घटित हुआ है, जिसके कारण मुझे स्ट्रेस आ रहा है, या मेरे इमोशंस पर, मेरे बिहेवियर पर चेंज पड़ रहा है, उसका इफेक्ट कम होने लगता है, उसके इफेक्ट से हम थोड़ा ऊपर आने लगते हैं, और दूसरा हम उस जो बात हुई है, जो घटना घटी है, हम उससे डिटैच होने लगते हैं। और जब डिटैच होकर उसको देखते हैं तो एक्सेप्ट करना बहुत इजी होता है। या चार व्यक्ति यहां पर आ सकते हैं, यदि आप सारे ही अपने सामने, सबके पास मोबाइल या किताब कोई है, कोई चीज है, हरेक के पास है, हरेक के पास हाँ कोई बुक आदि है। अच्छा, बुक को जरा, जो आप अपनी बुक को खोल कर ऐसे रखिए, ठीक है, हम जिस डिस्टेंस से उसको पढ़ सकते हैं, या मोबाइल में जो लिखा हुआ है, यस यस हरेक को करना है, जो मोबाइल में लिखा हुआ है आपके पास, हाँ, जिसमें कुछ लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ना है, आपको उसको डिस्टेंस से पढ़िए, ठीक है। चार व्यक्ति मैं समझती आगे आ जाए अपनी अपनी बुक लेके, तो जरा सबको दिखाई देगा। जैसे आप दो बैठे, आ जाइए आगे, आप तीसरे व्यक्ति आप भी आ जाइए आगे, हाँ ऊपर आ जाइए, स्टेज पर आ जाइए, हाँ चौथा आप में से कोई और भी आ सकता है, यस आ जाइए, आ जाइए अपनी अपनी बुक लेके, बस यहाँ खड़े हो जाइए, ऐसे आप किताब को रखिए सामने। आपने रखा ऐसी बुक को, जो उसमें लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, पढ़ सकते हैं ब्रदर्स, पढ़ सकते हैं? अच्छा, अब बिल्कुल आप उसको अपने नजदीक, आपको पीछे नहीं जाना, बिल्कुल बुक को आप अपने नजदीक 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 आंखों के नजदीक लाते जाइए। सभा में जो बैठे कर रहे हैं, अपने मोबाइल को एकदम नजदीक 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 आंखों के यहां तक ले आइए, लेकर आइए यहां तक, और नजदीक ले जाइए, और नजदीक ले जाइए, और नजदीक। अभी पढ़ सकते हैं? अब नहीं पढ़ सकते, ठीक है। थैंक यू, बैठिए। क्या सीखा आपने इससे? आपने बिल्कुल आंख के नजदीक ले आया, आप चिपक के आंख के नजदीक रख दो इसको, किताब को पढ़ पाओगे? जब आप उसको उससे डिटैच होते हो, तब उस जो उसने क्या लिखा है आप उसको पढ़ सकते हो। इसी प्रकार स्वीकार करने के लिए सिचुएशन से अपने को डिटैच करना जरूरी होता है, और जब हम स्वीकार करना शुरू करते हैं, उस फेज में आते हैं, डिनाइल फेज से एक्सेप्टेंस के फेज में आते हैं, तो हम अपने आप को धीरे 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 डिटैच करने लगते हैं, और जब डिटैच करते हैं तो स्वीकार करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। एग्रीड? एग्रीड? यस यस, फाइन, थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं, थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब परिवर्तन के बाद जो सिचुएशन आई है, उभरी है, जो परिस्थिति उभरी है, उसको असेस करो एज एन इन्वेस्टिगेटर, एज एन ऑब्जर्वर। असेस क्या करना है? जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, किसी ने मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया, ठीक है, अब आप असेस करो मेरे कंट्रोल में क्या है, और दूसरा मेरे कंट्रोल से बाहर क्या है, ठीक है। जो मेरे कंट्रोल में है उसको लिख दो। ये मैं आपको प्रैक्टिकल मेथड्स बता रही हूं, दीज आर नॉट थ्योरेटिकल। आप उसको लिख देंगे, जो मेरे कंट्रोल में है आपने लिख दिया, और लिखने के बाद आप उसको रीरीड करो, फिर से रीड करो, रीड इट ट्वाइस थ्राइस, और उस समय जो फीलिंग्स होंगी क्या होंगी? अच्छा, आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू दिस, ओके दिस मच आई कैन डू इट। वो आपके अंदर में वो करने का कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और जब वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा, अब आप उन चीजों पर आओ जो आपको लगता है वो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, जो आपने लिखी थी, और उनको पढ़ते जाओ, और पढ़कर ये देखो, अच्छा शायद मैं इनमें से कोई कुछ कर सकता हूं, थोड़ा बहुत, मे बी 10%, मे बी 20%, अच्छा क्या मुझे इसमें किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी? अच्छा हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्या मैं किसी की हेल्प ले सकता हूं? अच्छा फिर देखिए, क्या मैं इनको छोड़ दूं? लेट देम गो अवे। ऐसे करने से जब आप सिचुएशन को असेस करते हैं, तो उसके लिए आपको चेंज को अपनाना, जो चेंज के कारण अंदर में स्ट्रेस एंग्जाइटी टेंशन हलचल या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, या आपको कुछ खाने को अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें जो है ये खत्म हो जाएंगे। तो अभी तक हमने आपको तीन स्टेप बताए, और वो तीन स्टेप कौन से हैं? कि पहली बात, ये पक्की याद करो, कौन सी याद पक्की थी, जरा रिपीट कर लो। कौन सी बात पक्की थी? यू नो ऑल ऑफ यू शुड से, कौन सी बात थी वो? चेंज इज इनएविटेबल, नॉर्मल एंड एसेंशियल. हिंदी में क्या कहेंगे? परिवर्तन अनिवार्य है, सामान्य है और जरूरी है. ठीक है. और दूसरी बात क्या थी जो हमने आपको बताई? स्वीकार करो. और तीसरी बात, जो सिचुएशन उभरती है चेंज आने के बाद, उसको असेस करो. और साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है? देखिए, अचानक हम कुछ ब्रेक करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो नहीं हो पाता है. आप लोगों का अनुभव होगा, जब कोई बीमारी आती है ना, डॉक्टर कहते हैं आपको एक्सरसाइज करनी है, तो डॉक्टर वो होती नहीं है. डॉक्टर कहेंगे नहीं जरूरी है, अच्छा ठीक है करेंगे. तो उस समय हमको शुरू शुरू में एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल लगता है. लेकिन अगर हम पहले से ही अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ केयर का ध्यान रखते हैं, तो ये हमें बहुत मदद करता है. आप अपने रूटीन में सेल्फ केयर को मेंटेन करने की बातें हमेशा उस पर फोकस कीजिए. लाइक टेकिंग ए वॉक, वॉकिंग के लिए जाना. ठीक है, चलो और कुछ नहीं. तो कई कहेंगे हमारे शेड्यूल बड़े बिजी हैं, कितना भी बिजी हो आप 10-10 मिनट का वॉक कर लो. दूसरा, ओपन स्पेस में जाकर बैठना, गार्डन में जाकर बैठना, बच्चों को खेलते हुए देखना. या कभी कभी लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, कोई कोई 30-40-50 साल वाले के, तो उनको भी बड़ा मजा आता है, कहते लो हम भी खेलते हैं. भले उनकी वो जो बॉल जो है कहीं इधर उधर चली जाए, वो ठीक से उसको नहीं कर सके, लेकिन उनको मजा आता है. और हम क्या कर सकते हैं? हम थोड़ी एक्सरसाइजेस, ये कुछ एक्टिविटीज करें. जैसे हमने अभी कुछ मूवमेंट्स की ना अपनी बॉडी के साथ, तो हमें क्या लगा? थोड़े हम एनर्जेटिक हो गए. याद रखिए, बाहर में जाने से, वॉकिंग करने से, एक्सरसाइज करने से, हेल्थ केयर के रूटीन मेंटेन करने से, जब अंदर में ऑक्सीजन मिलती है, बॉडी अच्छी रहती है, तो बॉडी अच्छी रहती है तो माइंड भी हेल्दी रहता है. इसीलिए फिजिकल एक्टिविटीज लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं. और जब हम ये सब नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर जब अचानक परिवर्तन होते रहते हैं, तो वो हमारी बॉडी पर बहुत इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि हमने कभी सेल्फ केयर का ध्यान रखा ही नहीं ना. इन चीजों को करना भी बहुत जरूरी है. एंड देन फोकस ऑन रिजाइलेंस, ये भी हमें करना है. इसको करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें मालूम है कि लाइफ में जब चेंजेस आते हैं, वो लाइफ में चेंजेस हमें बहुत कभी कभी गहराई से इम्पैक्ट डालते हैं हमारे ऊपर. और हमारी रिजाइलेंस की पावर जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए. अगर हम अंदर से स्ट्रांग हैं, तो अंदर से अगर स्ट्रांग है, बाहर से कोई कितना भी कुछ कहेगा तो हम उसको फेस कर लेंगे. क्योंकि मैं इंटरनली स्ट्रांग हूं. मैं कुछ दिनों पहले ये बात बता रही थी किसी को कि एक मैंगो का अभी सीजन गया ना, अभी भी मैंगो तो आ रहा है ना, कहीं कहीं पर भारत में अभी भी मैंगोज हैं. तो अगर हम मैंगो को देख के मैंगो जैसा अपना नजरिया बना लें, मैंगो जैसा एटीट्यूड बना लें. वो मैंगो एटीट्यूड क्या होता है आपको मालूम है? क्या होता है? मैंगो अंदर से स्ट्रांग होता है और बाहर से कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है. अब मेरे हाथ में मैंगो है, ठीक है, और वो मैंगो मेरे हाथ में जो है बड़ा अच्छा खाने लायक, येलो कलर उसका, अच्छा सा मैंगो, स्वीट मैंगो है. लेकिन मैं उसको जोर से फेंकती हूं तो क्या होगा? वो दब जाएगा. लेकिन उसकी जो अंदर की गुठली है वो स्ट्रांग है, वो टूटेगा नहीं. टूटेगा वो नहीं? टूटेगा. और आप देखिए, नारियल होता है, नारियल, नारियल के साइलेंस पावर को बढ़ाना है. भले ये जो एक्सटीरियर चेंजेस हैं, जो आउटर एक्सटर्नल चेंजेस हैं, वो कुछ मेरे मन के अंदर डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहे हैं या मेरी बाहरी लाइफस्टाइल में डिस्कम्फर्ट लेकर आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अपने आप को कहिए, these moments of discomfort are preparing me to learn new lessons, making me stronger and wiser. ये जो कुछ डिस्कम्फर्ट के मोमेंट्स आए हैं मेरे जीवन में, ये किस लिए आए हैं? मुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं, ये मुझे ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, ये मुझे ज्यादा बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे इनको फेस करना है। मुझे अपनी जो रिजाइलेंस पावर है उसको मुझे बढ़ाना है, ये मुझे याद रखना है। मुझे छोटी सी बात याद आ रही है, एक युवा था जिसको जॉब नहीं मिल रहा था और उसका एक फ्रेंड था, उसने कहा क्या हुआ तुझे अभी तक जॉब नहीं मिला? उसने कहा मिलता ही नहीं है, इतना ढूंढ रहा हूँ। कहते एक जॉब है, अगर तुम करना चाहे तो कर सकता है। तो उसने कहा वो कौन सी जॉब है? कहते एक रिपोर्टर की जॉब है एक न्यूज एजेंसी में। तो उसने कहा ठीक है, तो मैं जब तक कोई दूसरी जॉब मिले ये जॉब करता हूँ। तो उसको वो मिल गई जॉब और वो गया पहले दिन, और पहले दिन उसको असाइनमेंट मिला। शिप पर जो है वो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होने वाला था, अभी आने वाला ना इंडिपेंडेंस डे, तो वो सेलिब्रेशन होना था। तो उसको असाइनमेंट मिली कि तुमको उसकी सारी रिपोर्टिंग करके आनी है। तो वो रिपोर्टिंग करने गया, तो करने गया, टाइम बीता, अब सेलिब्रेशन शुरू होनी थी 8 बजे, 8 बजा, 8:15, 8:30 बजा, 9 भी बजने को आया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। बड़ी शिप के ऊपर हलचल 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 चल रही है, कुछ कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अभी हो क्या रहा है? तो उसने पता लगाने की कोशिश की, तो उसको पता लगा कि शिप में कहीं कुछ छेद हो गया या क्रैक हो गया, उसमें से पानी आ रहा है। तो वो तो बेचारा परेशान हो गया और चला गया वापस अपने ऑफिस में। और वो जो उसका कलीग था वो बैठा था वहां उसके बाजू में, तो वो उसको पूछता है क्या हुआ तू रिपोर्टिंग करके आया? तो कहता है क्या क्या रिपोर्टिंग करूं, जब मैं नमक बेचने जाता हूँ तो पानी ऊपर से बरसने लगता है, जब मैं आटा बेचने जाता हूँ तो हवा आने लगती है, मेरी तकदीर ही ऐसी है। सेलिब्रेशन हुई नहीं, वो शिप के अंदर कोई छेद आ गया, पानी भरने लग गया और सब उसको ही ठीक करने में लग गए, इसलिए रिपोर्टिंग हुई नहीं। उसने जब सुना उसके दोस्त ने, वो तो भागा वहां से। तो कहते तुम क्यों जा रहे, कहां भाग रहे? कहते हैं अरे ये तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है जो न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर आनी चाहिए हेडलाइंस में, कि शिप पर वो सेलिब्रेशन हुई नहीं। आप सोचिए, जब चेंज होते हैं अपॉर्चुनिटी हमें क्रिएट करनी होती है, कोई दूसरा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, आप उसमें हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सेलिब्रेट योर ग्रोथ। आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने असेस कर लिया, आपने आपको समझा लिया, आप बिल्कुल ठीक हैं, अब आपने अचीव कर लिया, उस फेस से आप बाहर आ गए, नाउ सेलिब्रेट इट। सेलिब्रेट करेंगे कैसे? सेलिब्रेट करेंगे, यस, हम कहां से कहां आए, कहां से कहां आ गए। डू यू सी दिस, कौन से स्टेप से हम कहां पर आ गए? वाह, मैंने कुछ कर लिया, उसको सेलिब्रेट करो, यस आई डिड इट, लाइक दिस, मैंने ये कर लिया है। तो कैन यू सेलिब्रेट? लाइफ में छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सफलताएं, उनको यदि आप सेलिब्रेट करते जाएंगे, सेलिब्रेट का मतलब ये नहीं है कि हमको कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या कुछ करना है, वो अपने आप में सेलिब्रेशन भी छोटी छोटी प्रकार की होती है, उसको सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, वाह मैंने ये कर लिया। तो उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन बना रहेगा, उमंग उत्साह बना रहेगा, उमंग उत्साह बना रहेगा तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आप स्वीकार कर पाएंगे। और इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? इन सब के लिए हमें चाहिए मेडिटेशन। आपको लगता है मेडिटेशन चाहिए? लगता है? जो समझते हैं मेडिटेशन लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए, हमारे रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, वो हाथ उठाएं। लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। देखो बहन जी दो हाथ उठा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ ये देखिए लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, श्योर होना चाहिए लाइफ का हिस्सा। आपने हाथ नहीं उठाया, उठाया हाथ आपने, होना चाहिए लाइफ का हिस्सा। अच्छा अभी दूसरा क्वेश्चन, कौन यहां से जाके मेडिटेशन को अपने रूटीन का एक हिस्सा बनाएंगे? बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट। यस ठीक है, आपके सब हाथ कैमरा में बंद हो गए हैं, आपने हाथ उठाया है राइट, तो आपको मेडिटेशन करना है, इसे बहुत फायदा होगा। देखिए आपको सब कुछ सुनाया जा रहा है, हमारे राजयोग के सेशन हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें समझो नहीं होती है, छोड़ दीजिए, एकदम से सब कुछ नहीं होता। बच्चे को सीखने में पूरा एक साल लग जाता है ABC सीखने में, तो डोंट वरी, सामने वालों को मत देखो, वो तो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, छोटे छोटे करो। और कैसे वो होता है, मेडिटेशन डज नॉट मीन यू कैन मैजिकली डू एनीथिंग, क्योंकि मेडिटेशन कोई मैजिक नहीं है, यह कोई लाइफ से एस्केपिज्म नहीं है कि हम बड़े उससे अपने पहन के बैठ जाएं, एकदम से डिसिप्लिन होके बैठ जाएं, वो मेडिटेशन नहीं है। हम तो कहते हैं लाइफ बिकम्स इजी फॉर द बिजी पीपल इफ पीपल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डूइंग मेडिटेशन। चलते फिरते भी मेडिटेशन होता है। आप हमारी इतनी बड़ी टीम ये ब्रह्मा कुमारीज की देख रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, इनसे पूछिए कि ये कितने बिजी रहते हैं, और बिजी रहते हुए भी कैसे मेडिटेशन के कारण वो अपने आप को इजी फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं। तो इट मींस यू कैन ट्रेन योर माइंड, मैंने आपको अभी बताया था, अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, और माइंड को इतना स्ट्रांगली ट्रेन कीजिए दैट यू कैन फेस एनीथिंग, लर्न एनीथिंग एंड बिल्ड एनीथिंग स्टेप बाय स्टेप। ये मेडिटेशन है। Meditation means training your mind to become calm, quiet, aware and focused. जब हम meditation करते हैं ये सब हमें प्राप्त होता है, और मेरे हिसाब से जो morning sessions हो रहे हैं उसमें आपको meditation कराया जा रहा है, तो ये meditation आपको बहुत मदद करेगा। So every day, begin your day with meditation and make yourself calm, clear and powerful. So every day you meditate, you are becoming calmer, clearer and more powerful. So do not ignore your mind. मन से ही सब कुछ होता है, मन को इग्नोर मत कीजिए। Meditation is a kind of exercise for the mind. Meditation is a food for the mind. जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, इसी प्रकार मन के लिए मेडिटेशन जरूरी है। इसलिए अपने मन को ट्रेन कीजिए, मन का ध्यान रखिए, कुछ साइलेंस के मोमेंट्स अपने दिन में निकाल कर ऑब्जर्व कीजिए। इसको मैं कभी कभी कहती हूँ मिनी ब्रेक्स। आप समझे जितना स्टेज जितना डिस्टेंस आपको कवर करना है, आपकी जो रूम है काम करने की वो है, और आपको वहां तक जाना है, उतने डिस्टेंस में भी आप अपने आप को वो साइलेंस के मोमेंट्स दे सकते हैं। इसको मिनी ब्रेक्स कहते हैं। आप जैसे एक पानी का गिलास पीते हैं उसमें भी आप दे सकते हैं, गिव योर माइंड द मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, गिव इट पीस, उसको वही चाहिए मन को, एंड गिव इट डायरेक्शन। जब मन शांत होता है उस स्थिति में मन को डायरेक्शन क्लियर दिखाई देती है। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट, कल डॉक्टर सचिन ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। बिकॉज वेन योर माइंड बिकम्स पीसफुल लाइफ बिकम्स ईजियर टू हैंडल। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। Like, you know, our former administrative head, our chief, she said, to change the self is to change the world. And this is the motto of Brahma Kumaris. To change the self is to change the world. Apne ko change karo, dunia badal jayegi. देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा, आपके अपने बदल जाएंगे फॉर बेटरमेंट. इट इज थ्रू द साइलेंस ऑफ द हार्ट दैट द ग्रेटेस्ट नॉइज ऑफ द वर्ल्ड इज रिजॉल्व्ड. जो दुनिया में इतना सब कुछ है वो कैसे होगा जब हमारे अंदर, हमारे भीतर वो शांति का वास होगा. इसीलिए हमें मेडिटेशन करना है. शांति वो शक्ति है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है. और बहुत सारी ऐसी एलिमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें डे टू डे लाइफ में जरूरी हैं, वो हमें प्राप्त होती हैं. और उनकी प्राप्ति होने से हम अपने जीवन में खुशी, आनंद और शक्ति महसूस करते हैं. सो व्हाई नॉट टू मेडिटेट, इजंट इट? व्हाई नॉट टू मेडिटेट? तो करें हम मेडिटेशन 5 मिनट के लिए. बिल्कुल एकदम सीधे होके बैठ जाएं. अभी सब कुछ बुद्धि से निकाल दीजिए और अपने आप को केवल और केवल 3 थॉट्स देने हैं जो आप प्रैक्टिकली अपने स्थानों पर जाकर कर सकते हैं मिनी ब्रेक्स लेकर. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं. आई एम ए बीइंग ऑफ पीस. मैं शांति के सागर, परमात्मा की संतान, मास्टर शांति का सागर हूं. फील कीजिए. कर्म करते हुए शांत रहना और शांति की किरणें, शांति के वाइब्रेशंस फैलाना मेरा कर्म है. कर्म करते हुए शांत रहना, शांति के वाइब्रेशंस रेडिएट करना मेरा कर्तव्य है. ओम शांति शांति शांति.